तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में उन्होंने अभी अभी बलराम के कारनामे को देखा था, बलराम क्या कर सकते हैं, तो उसे जब बलराम से थोड़ा दूर रहना अच्छा है, थोड़ा कृष्ण के पास पहले जाओ। और यह भी कारण हो सकता है कि कृष्ण भगवान ने सोचा कि चलो मुझे मेरे भाई को बचाना चाहिए, तो मैं मेरे भाई बलराम और इन असुरों के बीच में मुझे आना चाहिए उनकी रक्षा करने के लिए, ताकि मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये कारण ये भी है कि बलराम जी ने सोचा कि अरे ये लोग कृष्ण के पास आ रहे हैं, तो मुझे कृष्ण के पास में जाके खड़ा होना चाहिए, कृष्ण की रक्षा करनी चाहिए। तो खैर जो भी हो, दोनों कृष्ण बलराम साथ में खड़े रहे और वहां सारे इन असुरों ने आक्रमण किया। और जैसे आक्रमण किया तो इनको बड़ा आनंद आया, कृष्ण बलराम को वीर रस का आस्वादन करना था, तो दोनों ने वही फॉर्मूला अपनाया, दोनों ने उनको पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के वो आकाश में फेंकने लगे, और फेंक कर उनको सबको बराबर वृक्षों के ऊपर उनको रख दिया। और इस प्रकार से जितने भी बड़ी संख्या में सारे असुर आए थे, सबकी मृत्यु हो गई। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसे लग रहा था कि नीले रंग के बादल सब जगह फैले हुए हैं, जैसे कि आकाश पृथ्वी पर उतर आया है, क्योंकि बादल भी नीले रंग के होते हैं ना, और ये असुर जो थे ये भी नीले रंग के थे और थोड़े अलग अलग रंगों के भी थे, रंग बिरंगे बादल अभी जैसे छा गए हैं वृक्षों के ऊपर, और उनके खून से लाल लाल रंग आ रहा था, इसीलिए नीला और लाल रंग का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा सुंदर लग रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान ऐसे हिंसात्मक कार्य भी करते हैं, मतलब किसी को मारना, उनका खत्म करना, फिर भी उसका असर इतना सुंदर हो जाता है। अब यहां हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का खून हो जाता है तो कितना एक ऐसा दृश्य होता है जिसको देखने के लिए कोई जाना नहीं चाहता, कब एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, कभी पशु भी गिरा हुआ होता है, हमको देखने में नहीं आता। तो इसे हम यहां संसार का कोई दृश्य होता है तो देखने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब हिंसा करते हैं तो उसका फल कितना सुंदर दृश्य बन जाता है। और इस प्रकार से सारे असुर वहां पर मर गए, और क्योंकि सारे असुर इन पेड़ों के ऊपर गिरे थे इसलिए सारे फल जो है वो नीचे गिर पड़े, और गिरने के प्रभाव से जो उनका वजन था उसकी वजह से सब फूट गए, और उन वृक्षों उन फलों का जो रस है वो सब जगह नीचे गिर पड़ा, और ऐसे लगा कि ताल फलों की जो नदी बह रही है मिट्टी से मिल गई थी, और जो कच्चे फल थे जो अभी तक टूटे नहीं थे, जिनका रस नहीं आया था, उनके साथ ये ग्वाल बाल खेलने लगे, लेकिन ग्वाल बालों ने एक फल भी खाया नहीं। क्यों नहीं खाया, कोई बता सकते हैं? क्योंकि ये ग्वाल बाल देखिए हालांकि ब्राह्मण नहीं थे वगैरह, लेकिन कितने सुसंस्कृत थे, वो जानते थे कि जहां खून लग जाता है वो दूषित हो जाता है जगह, इसलिए हम उस चीज को खा नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, तो इन फलों को उन्होंने खाया नहीं। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव जो रखा था कृष्ण बलराम के साथ वो ये था कि हमें ताल फल खाने हैं और धेनुकासुर का वध करो, लेकिन जब वो आए वहां धेनुकासुर और उनके मित्रों का वध हो गया, लेकिन उन्होंने फूल फल खाए नहीं, केवल उनके गंध से वो संतुष्ट रह गए। लेकिन जो पुलंद इत्यादि जो असभ्य जातियां थी, बाद में उन्होंने आकर इनको खा लिया, इन फलों को। तो इस प्रकार से देवता लोक से देवलोक से वहां पर फूलों की वर्षा होने लगी, देवतागण अपने अपने लोकों में रहकर आश्चर्यचकित हो गए कि बलराम और कृष्ण ने इतने आसानी से इन बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया है। केवल इन धेनुकासुर और उनके मित्रों की गर्जना से देवतागण अपने लोक में घबरा रहे थे, और इनको कृष्ण बलराम ने इतने आसानी से खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। बलराम जी ने और एक असुर का वध किया जिसका नाम था बाल लीला में प्रलंबासुर। ज्यादातर कृष्ण भगवान असुरों का वध करते थे, हर रोज कोई ना कोई असुर आता था, तो यह दैनिक कार्यक्रम था भगवान का कृष्ण बलराम का, कम से कम एक असुर तो मरना ही चाहिए, और वो भी भोजन के पहले, दोपहर के पहले। हर रोज का कार्यक्रम, कंस के मित्र इतने सारे थे, एक न एक कोई ना कोई आते रहता था, लेकिन थोड़े बहुत असुरों का वर्णन यहां भागवत में है। वैसे बहुत सारे असुर आए और कृष्ण भगवान हर बार वध करते थे इनका, तो कृष्ण ने सोचा कि चलो बलराम को भी थोड़ा चांस मिलना चाहिए, बलराम को भी वध करने दो। और धेनुकासुर का वध बलराम ने किया, इसके पीछे और एक भी कारण है, और वो ये है कि कृष्ण भगवान ने बलि महाराज को एक बार वरदान दिया था कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आपके कुटुंब के किसी भी व्यक्ति को मारूंगा नहीं। इसलिए वो नहीं मार पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि धेनुकासुर कौन था? बलि महाराज के पुत्र था ना, शाप मिला था उसे, इसलिए कृष्ण भगवान वचनबद्ध थे, वो धेनुकासुर का वध नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि बलराम जी आप जाओ, मैं नहीं कर सकता लेकिन आप कर सकते हो। इस प्रकार से बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में बताते हैं कि ये जितने भी असुर हैं जिनका वध कृष्ण भगवान ने वृंदावन में किया और बलराम जी ने भी, ये हमारे हृदय में स्थित अलग अलग अनर्थों के प्रतीक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इन अनर्थों का वध अगर हमें चाहिए तो हमें बलराम जी और कृष्ण की सहायता लेनी चाहिए। जैसे कि पूतना है वो नकली या ढोंगी गुरु के प्रतीक है, कालिया है वो गद्दारी का प्रतीक है, और जो अघासुर है वो जैसे क्रूरता और हिंसा का प्रतीक है, बकासुर है वो भी नाना प्रकार के छल कपट और ढोंगी व्यवहार का प्रतीक है। तो ये अलग अलग अनर्थों के प्रतीक हैं, और कृष्ण भगवान उनको मारते हैं। इसका मतलब है कि हमारे हृदय में ये सारे अनर्थ जो हैं, तो जैसे जैसे हम हरेक असुर के वध की लीला को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जैसे आपने इस अमुक असुर का वध किया है, उसी प्रकार से जो अनर्थ इस असुर का प्रतीक है जो हमारे हृदय में है, आप इसका वध कर दीजिए। जैसे पूतना का वध किया जब भगवान ने, या तो समझ लीजिए कालिया का वध किया, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जैसे कालिया का दमन किया, वैसे हमारे हृदय में जो गद्दारी की भावना हो, ऐसे गलत भावना हो, उनको आप दमन कर दीजिए। तो धेनुकासुर ये किस अनर्थ का प्रतीक है? गधे की बुद्धि का। गधे की बुद्धि मतलब क्या? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि क्या होती है? भौतिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि मतलब वो अज्ञान जिससे कि आत्मा का ज्ञान ढक जाता है, जिस मनोवृत्ति से व्यक्ति भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं और अपने शरीर से संबंध जोड़ने लगता है, जिस अज्ञान से वो हरि नाम के महत्व को नहीं जान सकता, जिस अज्ञान से वो भगवान के रूप को पहचान नहीं सकता, वो अज्ञान, वो अंधकार। इसलिए हमें इस लीला सुनते समय, पढ़ते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, बलराम जी से, कि कृपया आप हमारे अंदर ये जो अज्ञान है जिससे कि हम शरीर के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, जिससे कि हम आपको और आपके नाम को पहचान नहीं सक रहे हैं, इस अज्ञान को आप नष्ट कर दीजिए। बलराम जी वैसे आदि गुरु हैं, और अगर हम उनसे प्रार्थना करें तो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। बलराम वो आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं जिससे हमें आध्यात्मिक आनंद मिल सकता है। इस तरह से ये सारे अनर्थों का निवारण बलराम जी की शक्ति से हो सकता है। तो जैसे बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, वैसे ही हमें बलराम जी से आज उनके आविर्भाव दिवस के दिवस पर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में सारे अनर्थों का निवारण वो करें, हमें आध्यात्मिक बल दें जिससे कि हम उनके और कृष्ण भगवान के चरण कमलों में हमेशा आश्रित रहें। श्री बलराम जी की जय। बलराम जयंती महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। उसका परिणाम तुरंत मिलता था या थोड़े समय के बाद? आशा करते हैं कि कभी हमें ऐसा अनुभव नहीं करना पड़े, हमें जानने की आवश्यकता न पड़े कि तुरंत दिया या बाद में दिया उसका असर पड़ता है। लेकिन यह हम बताया जाता है कि तुरंत होता है, जैसे जय विजय को तुरंत आना पड़ा, कुबेर को, नल कुबेर और मणिग्रीव को भी तुरंत आना पड़ा, और साहसिका को भी तुरंत धेनुकासुर के रूप में आना पड़ा, विथ इमीडिएट इफेक्ट जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में। काल आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं तो वहां पे दिन और रात कैसे होता है? गोलोक वृंदावन में काल तो है, अवश्य है, क्योंकि काल भगवान की शक्ति है, और जहां भगवान है उनके साथ में उनकी सारी शक्तियां अवश्य विद्यमान होंगी। तो काल शक्ति नहीं है ऐसे हो ही नहीं सकता, लेकिन जिस रूप में काल शक्ति यहां अपने आप को पेश करती है उस रूप में काल शक्ति वहां पर काम नहीं करती। भौतिक जगत में काल शक्ति कैसे काम करती है? भौतिक यहां काल शक्ति का असर क्या होता है इस भौतिक जगत में? हर वस्तु को क्षीण कर देती है। कालोस्मि, भगवान कहते हैं मैं काल हूं। लोकक्षय कृत प्रवृद्धः, गीता के 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं काल हूं, मैं सबका नाश करने के लिए यहां आया हूं। तो भौतिक जगत में भगवान की काल शक्ति हर चीज का विनाश करती है, हर चीज का घटन होता है। काल जब यहां भौतिक संसार में कार्य करता है तो विभाजन करता है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का, और जो भूतकाल जो हो गया सो हो गया, और जो है वो भी हो जाएगा, और जो आएगा वो क्या जाने क्या आएगा, जब आएगा जब होगा वो भी बीत जाएगा, फिर से नहीं आएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव क्या होता है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब जो है वैसे ही चलते रहता है, आनंद ही आनंद चलते रहता है, उसमें कोई वस्तु क्षीण नहीं होती, किसी वस्तु का घटन नहीं होता, किसी वस्तु का इस प्रकार से परिवर्तन नहीं होता जैसे कि यहां होता है, बल्कि काल वहां अपने आध्यात्मिक रूप में है। वहां भी समय होता है, वहां भी दिन में 24 घंटे होते हैं, तो काल का प्रभाव अवश्य है, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे कि यहां पर है। और कोई प्रश्न? यह है कि बलि महाराज महान भक्त थे तो इनके पुत्र को कैसे ऐसे शाप मिला, वो कैसे असुर बना? महान भक्त तो पिता थे, बेटा नहीं था। अगर हिरण्यकश्यप जैसे बड़े असुर को प्रहलाद जैसे भक्त मिल सकता है तो बलि महाराज जैसे भक्त को एक असुर के रूप में पुत्र मिले कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे भी कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? भौमासुर किसके पुत्र थे? स्वयं भगवान के पुत्र, स्वयं भगवान के पुत्र असुर बन गए। तो जब भगवान के पुत्र असुर हो सकते हैं, महान भक्त के पुत्र कभी कभी असुर हो जा सकते हैं, तो संसार में अगर कोई भक्त हो और उसका बच्चा अगर मान लीजिए भक्त नहीं बन रहा है, दुख की बात है लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अपने अपने कर्मों को लेकर आते हैं हर जीव, अलग अलग जगह जन्म लेते हैं। उनका धाम स्वयं प्रकाशित है तो वहां रात कैसे हो सकता है? लेकिन वहां की रात और यहां की रात में दिन रात का अंतर है। वहां का सब कुछ, यहां जो भी है वो वहां का विकृत प्रतिबिंब है। यहां रात तमोगुण में है, लेकिन वहां की रात तमोगुण में नहीं है, वो विशुद्ध सत्व में ही रहते हैं। लेकिन केवल कृष्ण भगवान के लीलाओं के रस को बढ़ाने के लिए ये काल शक्ति भी भगवान की ऐसे कार्य करती है, जैसे कि योग माया के प्रभाव से ये सब चलता है। योग माया भगवान के सारे लीलाओं की व्यवस्था करती है जिससे कि लीलाओं का रस बढ़े। रास लीला जो है भगवान कृष्ण करते हैं वो बीच दिन में कैसे हो सकता है, दोपहर को 12 बजे नहीं, वो तो रात में होता है। शरद पूर्णिमा के रात को भगवान ने किया था ना, यहाँ रात को, वो वहां भी रात को होता है रास लीला। ठीक है, और कोई? जी, किसी की अगर कम आयु है तो उसका क्या कारण है? उम्र में व्याधि होती है और वो मर जाता है, ऐसा क्यों होता है? आप सब विद्वान हैं, आप बता सकते हैं क्या कारण, एक शब्द में बताइए। कर्म, कर्मों का फल, कर्मों का फल है। और कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी?